वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर।
ओम शांति। इस साल जब बाप दादा आते हैं और बाबा ने सब मूल्यों में देखा सार रूप में, बाबा बार बार बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ ही हमें समर्थ बनने नहीं देता है। तो व्यर्थ को कैसे खत्म करें? हरेक चाहता है कि मन के अंदर श्रेष्ठ विचार ही चलना चाहिए, लेकिन उसका साधन क्या है? श्रेष्ठ विचार हमारे मन में कैसे चले, व्यर्थ कैसे खत्म हो? सिर्फ व्यर्थ नहीं करो, जानते हैं कि व्यर्थ विचार नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए बाबा ने अलग अलग विधियां बताई है कि जब हम सारे दिन में किस प्रकार अपनी दिनचर्या रखें, तो उस दिनचर्या से हम अपने जीवन में व्यर्थ से, विकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। तो अपनी सारे सवेरे से शाम तक दिनचर्या चाहिए हमको, तो वो दिनचर्या बाबा बना के देता है। अगर उस दिनचर्या के अनुसार हम चलते हैं तो व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। तो खास करके तीन बातें हैं जो सवेरे से रात तक हम करते हैं। एक, सवेरे उठते ही योग करते हैं। अमृत वेले जब हम योग में बैठते हैं तो योग अगर यथार्थ है, विधि पूर्वक है, तो मन और बुद्धि को हम स्वच्छ कर सकते हैं। अर्थात विधि पूर्वक योग करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति से जो पुराने संस्कारों का प्रभाव है, उस प्रभाव से दिन प्रतिदिन हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो उसकी यथार्थ विधि चाहिए। दूसरा, उसके बाद बाबा हमको ज्ञान सुनाता है, मुरली सुनते हैं। मुरली तो हरेक सुनते भी है, नोट भी करते हैं हम, लेकिन सारे दिन में कर्म करते समय किस प्रकार उस ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए, ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, उसकी भी विधि चाहिए। क्योंकि सुनना ही सब कुछ नहीं है, श्रवण ही सब कुछ नहीं है, श्रवण के बाद आचरण में लाने के लिए उसकी विधि चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए। नहीं तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, नोट भी करते हैं, और सवेरे सुनी मुरली अभी शाम तक पूछो, दिन में पूछो, याद ही नहीं रहता है। क्यों? विधि पूर्वक ज्ञान को हमने ग्रहण नहीं किया। तो हर एक कर्म की विधि है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। फिर ऐसे ही ज्ञान भी, योग भी किया, ज्ञान भी सुना, लेकिन सारे दिन में कर्म करते समय उस ज्ञान का कैसे अपने संस्कारों पर प्रयोग करो। सिर्फ दोनों शक्तियां है, ज्ञान और योग, योग भी किया, ज्ञान भी सुना, तो हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमको हाथ में कुछ हुआ है, दवाई अपने जेब में रख दो तो ये बीमारी ठीक नहीं होंगी। समय अनुसार जैसे डॉक्टर बताते हैं उस अनुसार दवाई को लगाना पड़ेगा, उस विधि के अनुसार दवाई लेनी पड़ेगी, तब जाकर के बीमारी ठीक होती है। तो आत्मा के अंदर जो पांच विकारों की बीमारी है, उससे मुक्त होने के लिए ज्ञान और योग का प्रयोग चाहिए। सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होगा, वो हम नहीं कर पाते हैं, समझते हैं सिर्फ सुनने से हो जाएगा, नहीं। तो इसलिए इन तीन बातों का अगर हम अच्छी तरह से समझकर, साधारण रूप से अगर समझकर थोड़ा भी अपने आचरण में लाते हैं, तो हम जीवन के अंदर परिवर्तन देख सकते हैं। जो जिस लक्ष्य हम इधर आए हैं कि अपने विचार, अपने पुराने संस्कार, आदतों को हमें परिवर्तन करना चाहिए, उस लक्ष्य हम आए हैं। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेन, विशेष इन तीन बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें एक है कि ज्ञान जो अमृत वेले हम सुनते हैं मुरली, तो उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, देखा गया बहुत अच्छी तरह से भावना से श्रद्धा से बैठते हम ज्ञान सुनते भी हैं, कहीं कभी देखा कि नोट भी करते हैं, लेकिन इससे हमारे आचरण में नहीं आता है। तो इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए तीन प्रकार की विधियां हैं। सहज रूप से अगर इन तीनों बातों को विधियों को आप अपनाएंगे तो आज सुनी हुई मुरली आप अपने अंदर अच्छी तरह से धारण करके 10 साल तक भी याद रख सकते हैं। ऐसे हमारे पास मशीनरी है, सिर्फ उसका उपयोग करना आना चाहिए। बाबा ने हरेक को, भगवान ने हरेक को ऐसी मशीनरी टेप रिकॉर्डर दिया है, तो उसके अंदर हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं उस अनुसार उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, अपने अंदर स्मृति को रख सकते हैं। जब चाहे वो स्मृति जागृत हो जाए, करो तो ज्ञान जागृत होता है। तो ज्ञान कर्मों में यूज करना है, तब कर्म परिवर्तन हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। तो कर्म श्रेष्ठ है तो जीवन श्रेष्ठ है। तो इसके लिए देखा गया ज्ञान सुनते से मैं आप देख लो, 2-3 दिन अभी इधर है तो आप करके देख लो। ज्ञान जब सुनते हो सवेरे मुरली बहुत अच्छी तरह से सुनते बैठो, सुनते सुनते जो आपको अच्छा लगता है, हर एक मुरली के अंदर 4 विषय होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक जो भी आपको अच्छा लगता है। कभी किसी को योग के पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, किसी को सेवा करने का उमंग उत्साह है, तो बाबा सेवा का भी प्लान बताता है, बच्चे ऐसी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है वो नोट करो, सुनो और लिखो, 1, 2, 3 जो आपको अच्छा लगता है, 3-4 पॉइंट्स नोट करो। और उसके बाद जब मुरली खत्म होती है लास्ट में यहां ही बैठकर एक बार देख के पढ़ो कि मैंने क्या लिखा है, और आज सारे दिन में मुझे किसका अभ्यास करना चाहिए। तो उस एक पॉइंट को आप अंडरलाइन करो जो आज ये मुरली के पॉइंट मुझे सारे दिन में आज अभ्यास करना चाहिए, कल सवेरे दूसरा मिल जाएगा। आज एक दिन के लिए सुना, लिखा और आपने देख के रिवाइज किया यहां ही बैठ करके। अगर इसके बाद आप बाहर गए और सेवा में किसी बातों में व्यस्त हो गए तो आज सुनी हुई मुरली देखना, आप रात को अगर आपको कोई पूछेगा आप तुरंत जवाब दे देंगे, क्यों एक बार सुना हुआ याद रहता एक दिन तक।
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
तो मुरली सुनने के बाद अगर इस विधि से हम सुनते हैं कि सुनने के बाद लिखना चाहिए, लिखने के बाद देख करके अगर आप रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो, तो देखना एक दिन तक आज सुनी हुई मुरली आपको याद रहेंगी। बाहर जाते ही अगर आप किसी कर्मों में व्यस्त रहे तो भी आज अगर आपने अंडरलाइन किया ये महावाक्य मुझे सारे दिन में चिंतन करना चाहिए, फिर भी बाहर जाने के बाद आप व्यस्त हो गए, एक दिन तक आज सुनी हुई मुरली आपको याद रहेंगी, क्यों आपने सुना, लिखा और रिवाइज किया। फिर अगर उसी को आपने सुना, लिखा, रिवाइज करने के बाद यहां से बाहर जाने के बाद सेवा करते हुए अगर थोड़ा मनन चिंतन करते हो तो देखना आज सुनी हुई मुरली 1 महीने तक आपको याद रहता है। और उसी को आप 10 साल तक भी कर सकते हैं, सुनने के बाद मनन चिंतन करने के बाद मुख से वर्णन करो। अगर कोई सारा दिन में मिलता है मुख से आज सुनी हुई मुरली किसी को सुनाओ, आज बाबा ने ये कहा, अगर 2-3 दफा भी आपके मुख से वर्णन होता है आज सुनी हुई मुरली ज्ञान, देखना आपके अंदर 10 साल तक भी याद रहता है। हमारे अंदर यादाश्त शक्ति है, लेकिन वो कैसी बढ़ानी है, सिर्फ एक दफा सुनने से याद नहीं रहता, इतनी हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं है। तो इसलिए सुनने के बाद बहुत समय तक ज्ञान स्मृति में रहना चाहिए। तो बार बार स्मृति जागृत हो तो श्रेष्ठ स्मृति अगर है अपने आप अपनी स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाती है। तो स्मृति अपने आप नहीं होंगी श्रेष्ठ, तो उसके अंदर भरना पड़ेगा। आप कहेंगे सवेरे हमने सुन लिया तो सारा दिन याद रहेगा, नहीं, सिर्फ श्रवण से नहीं, श्रवण के बाद उस विधि से मनन चिंतन चाहिए, लिखना भी चाहिए। और लिखने के बाद यहां ही बैठ के आप एक दफा देख के पढ़ो क्या लिखा मैंने, और उसमें से एक महावाक्य आप नोट करो, अंडरलाइन करो, किस मुरली को, इस पॉइंट को मुझे आज सारे दिन में कर्म करते सब कुछ करते हुए चिंतन मनन करना चाहिए। फिर हमारे सामने अगर कोई भी आता है, अगर मुख से आप वर्णन करते हो, अगर स्मृति में है, अच्छी तरह से नोट किया है, तो किसी को देखते आपको याद आता है कि आज बाबा ने ये कहा था। तो बार बार सवेरे सारे दिन में एक दो दफा तीन दफा अगर आप रिवाइज रिपीट करते हो, देखना आज सुना हुआ ज्ञान आ हमारे बुद्धि के अंदर ऐसे फिट होता है जैसे व्यर्थ संस्कार बन कर सकते हो, भर सकते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार भी भर सकते हैं। वहां भी एक दफा सुनने से संस्कार नहीं बनता है, बार बार उसका मनन चिंतन करते हैं हम। कोई भी एक गलत बात देखी सुनी, मन में बार बार चिंतन चलता है, तो वो अंदर पक्का हो जाता है, संस्कार बन जाते हैं और बार बार स्मृति में आता है, फिर मन में विचार में आता है, फिर कर्मों में आता है। तो ऐसे ये भी ज्ञान को भी अगर आप सवेरे, बाबा सवेरे उठते ही अमृत वेले मुरली सुनाता है अच्छे महावाक्य, एक दो तीन नोट करो और रिवाइज करना चाहिए। मुख से वर्णन चाहिए, इधर उधर के बातें करने के बदले जो आज सुनी मुरली कल सवेरे दूसरा मिल जाएगा। अगर इस तीन विधि से हम ज्ञान को अपनाते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बार बार उसी की स्मृति आती है, वही चिंतन चलता है। अगर इस प्रकार करने से हम व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। जो मन में बार बार संसार की बातें आती है, बहुत जन्मों की बातें हैं, भरी हुई है अंदर, मन हमारा खाली नहीं है, बहुत सारी बातों के प्रभावित है, तो प्रभावित मन को आप कहो इतने कितना 84 जन्म लेते हैं, अंतिम जन्म है अभी, कितने जन्मों से हम पंच तत्वों के प्रभाव में आए हैं, कितनी बातों के प्रभाव में आए हैं, उन सब का प्रभाव मन पर है, एकदम उस प्रभाव से मुक्त नहीं होंगे। तो उसके लिए इस ज्ञान का, इस विधि पूर्वक अगर हम प्रभाव डालते हैं और चिंतन अपने आप करने लग जाएगा मन, क्यों अंदर भरा हुआ है। अगर ये नहीं भरते हो तो बहुत जन्मों से जो भरा हुआ है वो चलेगा। इसको कहते हैं खाली मन शैतान का घर है, ये मन खाली है, उसको पुराना भरा हुआ है वही आएगा। अगर पुरानी बातें मन में बार बार नहीं आना चाहिए तो अभी कुछ व्यवस्था करने पड़ेंगे ना। जो बाबा ज्ञान सुनाता है अगर इस विधि से अंदर हम भरते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो पुरानी बात रिपीट नहीं होंगी। तो ये एक विधि है मन को व्यर्थ से मुक्त करने की। दूसरा फिर है, फिर हम सवेरे अमृत वेले शाम को योग में बैठते हैं। योग में बैठने के बाद भी मन और बुद्धि जो बाबा कहता है एकाग्र होना चाहिए, होता नहीं है। क्यों? सारे दिन में हमारे मन और बुद्धि पर किसका प्रभाव है? जिसका प्रभाव है उस तरफ जाएगा जरूर। किससे प्रभावित हो? वस्तु, व्यक्ति, वैभव, दुनिया के बातों से हम प्रभावित होते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, बोलते भी हैं मुख से, कई कई ऐसे शब्द निकलते भी हैं, तो उन सब के प्रभाव में हम आते हैं। तो योग में जब बैठो तो मन बुद्धि ऊपर कैसे जाएगा? तो योग के लिए कहा प्रभाव मुक्त स्थिति चाहिए। अगर व्यर्थ और विकल्प के प्रभाव से बुद्धि स्वच्छ है, मुक्त है, तो स्वच्छ बुद्धि ऊपर जाएगी। हल्की है, फ्री है। बाबा उसको कहता है डबल लाइट स्थिति आई है, आत्मा अपने स्वरूप में है और इन सभी प्रभाव से मुक्त है, हल्की है। तो हल्की चीज, फ्री चीज अपने आप ऊपर चढ़ेगी ना, तो इन दोनों से मुक्त कैसे करे? एक तो ये हो गया, लेकिन जब बैठने के बाद भी योग करने की हरेक की इंटरेस्ट है, लगन भी है, इच्छा भी है, बहुत दौड़ दौड़ के भी आते हैं, पता है सारे बहुत जन्मों के विकर्म से हमें मुक्त होने का यही संगम का एक समय है कि बहुत जन्मों से जो हमने भरा हुआ है अंदर किचड़ा, वो साफ करने का समय जो है यही संगम युग है। और इस थोड़े से समय के अंदर सारे कलप का जो किचड़ा है उसको हमें साफ करना चाहिए, ये भी हमें संगम युग का जो महत्व है वो भी पता है, जानते हैं संगम युग पर हमें क्या करना चाहिए, ये पुरुषोत्तम युग पर हमारा कर्तव्य क्या है, बहुत जन्मों से जो भरा हुआ है। तो उसके कारण हमें एक विधि न होने के कारण योग के लिए रुचि भी है, लगन भी है, बैठते भी है, लेकिन विधि न होने के कारण एकाग्र नहीं होता है, मन बुद्धि भटकती है। इसलिए आप सवेरे योग में बैठते हैं, शाम को बैठते हो, एक विधि को अपनाओ और उस विधि पूर्वक बैठते हो, मन बुद्धि को जहां जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा तक ले जा सकते हैं। अगर खाली छोड़ देते हो तो उसके पर बहुत जन्मों का जो प्रभाव है उस प्रभाव के आधार से चलेगा वो, और उस प्रभाव से मुक्त करके आप अपना प्रभाव जो ज्ञान का प्रभाव है उस प्रभाव से मन बुद्धि को ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हैं। तो वो विधि चाहिए। इसलिए जब भी आप योग में बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, हर एक की अपनी ताकत है, ऐसे नहीं 2 घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, पाव दर्द हो रहा है, नहीं, हट से नहीं है, स्व इच्छा से 15 मिनट भी बैठो, विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए। तो वो विधि है, हमारे पास 2 शक्तियां है, एक मन और एक बुद्धि। कभी कभी हम मन को काम देते हैं, बुद्धि खाली हो जाती है, खाली बुद्धि भटकती है और कोई बातें स्मृति में आती है, उसके कारण एकाग्र नहीं रहता है, मन को मन के अंदर भी आता है ना, तो बुद्धि के अंदर पुराने बातें जागृत होती है। तो इन दोनों शक्तियों को अगर हम काम में लगाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट भी बैठो, इन दोनों शक्तियों को यहां से सूक्ष्मतन परम धाम तक ले जाना है, तब शक्ति को हम चार्ज कर सकते हैं, इन दोनों को स्वच्छ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सहज विधि है, जब भी आप योग में बैठो मन बुद्धि से बात करता है, शुरू में मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। अगर ये नहीं करते हो, आप अपने आप से जवाब देते हो मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, तो बुद्धि का काम क्या है? खाली है। तो खाली बुद्धि है, कुछ ना कुछ बातें याद आ जाती है, अरे आज इसको फोन करना था, ये काम करना था, खाली बुद्धि के अंदर बहुत सारी स्मृतियां है, वो जागृत हो जाती है। इसलिए इन दोनों शक्ति को एक ही समय पर काम में लगाना चाहिए, फ्री छोड़ना नहीं चाहिए, और वो भी सहज रूप से। तो सहज रूप है, मन पूछता है मैं कौन, तो बुद्धि जवाब देती है मैं आत्मा हूं, फिर उसके अंदर और जाओ, आत्मा क्या चीज है, ये कहां है, ये आत्मा के अंदर क्या है, मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, मेरी संस्कार मेरे अंदर कौन से है, कौन से संस्कार लेके आए थे हम, अब अंदर कौन से संस्कार भरे हैं, उसकी गहराई में जाओ। फिर दूसरा ले लो, मेरा रूप क्या है, फिर तीसरा ले लो, मेरे गुण कौन से हैं, तो इस प्रकार चौथा ले लो, मैं इस शरीर में बैठ के क्या कर्म करता हूं, पांचवा मैं कहां से आया। तो ये 5 प्रश्नों को आप चिंतन करते हो, प्रश्न उत्तर करते हो, तो मन और बुद्धि 15 मिनट भी बैठे, उन दोनों को आपने काम दिया। जैसे आप बताते जाते हो ऐसे मन बुद्धि अपने आप को जागृत करते आप, तो ये जागृत करते करते प्रश्न पूछते जाओ, मैं कहां से आया, हां सूर्य चांद सितारों से, ऊपर से आया, ऊपर क्या है, प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि जवाब देती है। तो जैसे आप प्रश्न पूछते जाते हो मन बुद्धि दोनों यात्रा कर रही है। तो इस प्रकार अगर 15 मिनट भी मन बुद्धि हमारे 15 परम धाम तक जाती है, सर्वशक्तिवान सदा शक्ति देता है। एक ही दिशा में ऊपर ले जा रहे हम तो शक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, सारे दिन में अगर हम यहां हॉल में बैठे हैं, ऊपर सूर्य आया हुआ है, लेकिन सूर्य की किरणें हमें नहीं लगती है, क्यों? बीच में छत है, गर्मी लगती है, पसीना नहीं आता है। तो ये हॉल छोड़कर आप 5 मिनट अगर बाहर खड़े हो जाओ, कुछ करना नहीं, आप चाहो या नहीं चाहो, बाहर खड़े हो जाओ धूप के अंदर, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है, 5 मिनट के अंदर चाहो या नहीं चाहो अपने आप पसीना निकलता है। तो ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है। तो ऐसे ही शिव बाबा सर्वशक्तिवान आत्पतित आत्माओं को पावन बनाने आया है, लेकिन आत्मा शरीर के अंदर है, तो शरीर भान से आत्मा को जागृत करना चाहिए। तो जब भी हम योग में बैठते हैं तो सारे दिन में शरीर का उपयोग करते हैं हम, तो शरीर भान में आते हैं, तो इसलिए कम से कम जब हम बैठते हैं योग के लिए तो शरीर भान से अपने आप को जागृत करना चाहिए, अपने स्मृति को जागृत करो कि मैं कौन। अगर इस प्रकार स्मृति को जागृत करते हम कितना समय इस शरीर के वातावरण से उस वातावरण में ले जाते हैं मन बुद्धि को, तो वो वातावरण शक्तिशाली है, तो उस किरणा शक्तियों को आत्मा ग्रहण करती है। जैसे देखो आप रेडियो ऑन करते ही बीबीसी की न्यूज नहीं सुनाई देती है, रेडियो के बाहर सभी प्रकार के वेव्स है, अंदर कौन घुसेगा? जिसके साथ नंबर जोड़ते हो उसी प्रकार के वाइब्रेशंस को कैच करता है। किसके साथ अपने नंबर देखो, अभी 2-3 भाई यहां बैठे हैं, जरूर योग भी कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठे बैठे आंखें भी खुली है, यहां बैठे हुए आप घर में जाके चक्कर लगा के आ सकते हो, यहां बैठे बैठे मन बुद्धि को ऊपर भी ले जा सकते हो। तो किसके स्मृति में बैठे हो, किसके साथ मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ा है, वो जरूरी है। अगर हमको शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है, भगवान के साथ जोड़ना है, तो उसका नंबर है। उस स्मृति से अगर आप मन बुद्धि को ले जाते हो, उस प्रकार के वाइब्रेशंस को हम ग्रहण कर सकते हैं, वो आत्मा को चार्ज करता है। आत्मा के अंदर जो नेगेटिव का प्रभाव है उससे हमें मुक्त करता है। जैसे शरीर के अंदर सूर्य की किरणें शरीर को लगती है तो पसीना निकलता है ना, अपने आप निकलता है, गंदगी निकलती है। तो आत्मा के अंदर जो पापों का मैल चढ़ा हुआ है, तो ये शक्ति की किरणें जब पड़ती है अपने आप स्वच्छ होता है, ये देख सकते हैं आप। फिर बाबा ने कहा स्वप्नों में भी अपवित्रता नहीं चाहिए, संपूर्ण पवित्रता चाहिए। तो अपने आप तो नहीं होंगे ना, संपूर्ण पवित्र स्वप्नों में भी, जागृत अवस्था में तो होश है, वहां तो सोए हुए आप, अंदर जो संचित कर्म है, अंदर जो बहुत जन्मों से किए हुए संस्कार भरे हुए है, उसका भी प्रभाव वो मिटना चाहिए, अपने आप तो नहीं मिटेगा, तो ऐसी शक्ति चाहिए। तो इस विधि पूर्वक अगर हम मन बुद्धि को परमधाम में कितना सेकंड, कितना मिनट मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, शक्ति महसूस होती है। और आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन हमारे स्वप्न स्वच्छ होते जा रहे हैं। योग निंद्रा का ड्रीम लेस स्लीप, जब सोए तन भी सोता है मन भी सोता है, नहीं तो तन सोता है रात को, मन सोता नहीं, टीवी देखता रहता है ना, अंदर की टीवी, अंदर क्या किस प्रकार के संस्कार है, स्वप्न बताते हैं हमारे अंदर अभी भी क्या भरा हुआ है। आत्मा तो है, आत्मा के अंदर क्या भरा हुआ है, किस प्रकार के संस्कार अभी भी है, ज्ञान भी सुनते हैं, योग भी करते भी है, नहीं ऐसा भी नहीं, फिर भी अंदर अभी भी किसका प्रभाव है, स्वप्न बताते हैं। बेहोशी के अंदर जो जागृत होते हैं तो बताते हैं हमारे अंदर इस प्रकार के संस्कार आज अंदर है, कल मन में विचार आएगा, परसों कर्मों में आएगा। तो विधि पूर्वक अगर हम अभ्यास करते हैं, देखो सूर्य की किरणें अगर विधि पूर्वक पड़ते हैं शरीर के ऊपर, पसीना निकलता है। तो आत्मा के अंदर जो गंदगी है अस्वच्छता है उसको आप देख सकते हैं, दिन प्रतिदिन बुद्धि हमारी कैसे स्वच्छ होती जाती है, पुराने संस्कारों के प्रभाव से आत्मा कैसे स्वच्छ होती जाती है, मुक्त होती जाती है, देख सकते हैं कि हरेक आत्मा अनुभव से ही आगे बढ़ती है। अनुभव नहीं है तो आगे नहीं बढ़ती है, जहां खड़े वहां ही है। कितना भी आप सुन लो तब का श्रवण सब कुछ नहीं है, श्रवण के बाद आचरण चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, उपयोग चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग करने के बाद जो प्राप्ति होती है वो अनुभव, तब का अनुभव की अथॉरिटी, वो अनुभव मनुष्य को आगे बढ़ाता है, उसके जीवन में उन्नति प्रोग्रेस होता है, नहीं तो अपने आप प्रोग्रेस नहीं होता है। आप कहेंगे हमने सुन लिया इसलिए हो जाएगा, नहीं, सुनने के बाद उसी विधि पूर्वक बार बार अभ्यास करते हैं, अभ्यास अनुभव वो एक अथॉरिटी है, आज वो चाहिए। नहीं तो ज्ञान तो बहुत कुछ है, किताबों में है, सब जगह पर है, लेकिन आचरण में कैसे लावे हम उसकी विधि चाहिए। तो इसलिए ये दूसरी विधि है कि योग में बैठकर मन बुद्धि को कैसे ले चलना चाहिए, भले 10 मिनट बैठो 15 मिनट बैठो, आप विधि पूर्वक बैठेंगे तो मन बुद्धि को स्व इच्छा के अनुसार, जो बाबा ने श्रीमद दिया है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। आत्मा समझना जरूरी है कि आत्मा के अंदर संस्कार है, आत्मा को शक्ति चाहिए, शरीर को शक्ति चाहिए तो खाना खाते हैं, वो शरीर के लिए, आत्मा को शक्ति चाहिए तो आत्मिक स्मृति में बैठना पड़ेगा, शरीर के भान से आत्मा को जागृत करना पड़ेगा। नहीं तो शरीर के स्मृति में अगर इधर बैठते बार बार पाव दर्द करता है, कोई आया इधर देखते हो, कोई गया उधर देखते हो, है ना, तो हम बैठे किसके लिए यहां, इधर उधर देखने के लिए बैठे। अर्थात अभी भी यहां बैठने के बाद भी शरीर की ही स्मृति है, पहले स्वयं की शरीर की स्मृति है, फिर शरीरधारियों की स्मृति है, शरीरधारियों को देखते रहते हैं तो उसी का चिंतन चलता है, तो कैसे एकाग्र होगा। आए लक्ष्य लेके हमें कुछ करना है, कुछ साधना करनी है, तपस्या करनी है, लक्ष्य है, लक्ष्य होने के बाद भी अगर विधि नहीं है तो प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सहज साधारण, पता है बाबा के बच्चे साधारण है, बहुत एजुकेटेड नहीं है, तो साधारण होते हुए भी बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते। इसलिए बाबा बहुत सहज रूप से बताता है, साधारण भाषा है, सिर्फ देखो बहुत कुछ ज्ञान है, एक मुरली के पॉइंट ले लो का, कल सवेरे दूसरा मिल जाएगा, ऐसे नहीं एक दफा सुना हुआ एक हफ्ते के बाद फिर मिलेगा, सब जगह ऐसा ही है। और कहीं सत्संग में जाओ, हफ्ते में एक दफा, दो दिन में एक दफा, 15 दिन में एक दफा होगा, यहां रोज नई नई पॉइंट बाबा देता है। अलग अलग 4 विषय है, एक एक विषय के ऊपर एक एक, जो आप समझते हो हमारे जीवन में क्या कमी है वो आप जानते हैं, हमें बार बार गुस्सा आता है पता है, तो उसके लिए बाबा ने कौन सी दवाई दिया है, कौन से पॉइंट दिया है, उसको अभ्यास में लाओ, चिंतन करो, नोट करो, मुख से वर्णन करो, औरों को सुनाओ तो याद रहेगा कि मैंने इनको कहा था, मुझे भी करना चाहिए, वर्णन भी करना जरूरी है, तो सेल्फ रियलाइज होता है। तो इस विधि से करने से जो व्यर्थ मन में चलता है, व्यर्थ के प्रभाव में आते हैं, उससे अपने आप को बचा सकते हैं, एक। दूसरा, जब बैठ करके तपस्या करनी चाहिए, शक्ति भरनी चाहिए, वहां चारों तरफ वातावरण हमारा कैसा है, हम किसके संबंध संपर्क में आते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। और हमारे बहुत जन्मों के संस्कार भी है, उन सब के प्रभाव से मन और बुद्धि को मुक्त कर उसको दिशा अगर देंगे, आप काम में लगाएंगे तो उस दिशा से आप ले जा सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, करते करते मन बुद्धि को ले जाएंगे ऊपर आप,
तो इस प्रभाव से जैसे मुक्त होता जाएगा तो मन बुद्धि शक्तिशाली होता जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये बैठ करके अभ्यास करना चाहिए। अगर ये दो प्रकार के अभ्यास करते हो तो क्या होगा, कर्म क्षेत्र में बहुत सारी बातें आती हैं, कहीं भी संसार में रहो आप, तो उस समय हमारे पुराने संस्कार है, संस्कार के वश कोई न कोई बात याद आती है, किसी ने कुछ बोल दिया आपको गुस्सा आएगा, क्यों, अंदर संस्कार है, आएगा नहीं, ऐसा नहीं। अगर सवेरे विधि पूर्वक योग किया है, मुरली सुनी हुई है, तो तुरंत बुद्धि मन को समझाती है, नहीं आज बाबा ने कहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए, हाँ वो अपना काम कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। हम अपने आप को समझा सकते हैं, औरों को रोक नहीं सकते हैं, हर एक का अपना पार्ट है, वो अपना बजाएगा, आप अपने को समझा सकते हैं, अपने मन को सावधान कर सकते हैं। तो उसके लिए अस्त्र है, शक्ति आए, अपने आप को पढ़ाना है तो मन को समझाते रहेंगे तो मन आपके कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो मन को कौन कंट्रोल करेगा, कौन घोड़े को लगाम पकड़ेगा। तो ये शक्तिशाली समझदार बुद्धि और शक्तिशाली बुद्धि, समझ भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। कभी कभी देखते हैं समझ है शक्ति नहीं है, तो न चाहते हुए भी मुख से गलत शब्द निकलता है, पता है नहीं बोलना चाहिए, समझते भी है तो भी मन में भी निकलता है, मन में मन भी चलता है और मुख से भी निकलता है। अभी भी समझ ऐसा नहीं, नहीं समझ है, ज्ञान अच्छी तरह से पता है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अर्थात कंट्रोलिंग पावर नहीं है, हम स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों को कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे हम। तो स्वयं को पहले चाहिए, नहीं मुझे नहीं बोलना है, लेकिन आपसे बोल निकालने के लिए ऐसे परिस्थिति आएंगी, व्यक्ति आएगा, परिस्थिति भी आएंगी कि आप न चाहते हुए आपसे बुलवाएगा, तो ये सावधानी चाहिए। अगर इस प्रकार रोज मुरली सुनते हैं, हम ज्ञान योग भी करते हैं, तो अपने पुराने संस्कारों को, जब सारे दिन में कर्म करते, जब खाली मिलता है, कर्म करते करते अपने आप को समझाना चाहिए, उसको कहा दवाई लगाना है, तो ये ज्ञान और योग का प्रयोग अपने ऊपर करना है, तब जाके हमारे जो पुरानी आदत बनी हुई है, कभी कभी ऐसा होता हम महसूस ही नहीं करते हैं, रियलाइज ही नहीं होता है। तो इसलिए कहा जब तक महसूस नहीं किया है और इस ज्ञान और योग का प्रयोग अपने ऊपर नहीं किया है तो पुराने संस्कार अपने आप परिवर्तन नहीं होंगे। महसूस करना जरूरी है कि हम न चाहते हुए हमारे मन में ये विचार चलते हैं, अंदर उस प्रकार के संस्कार अभी है, ये महसूस चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे विचार नहीं आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए हमको, तो बाबा ने ज्ञान दिया है, योग करते हैं, योग की शक्ति भी है, इन दोनों का प्रयोग चाहिए। आप कहेंगे हम सवेरे योग किया है, मुरली भी सुनी है, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, दवाई जेब में रख दो और हमारी बीमारी ठीक हो जाएंगी, दवाई है हमारे पास, जेब में रखा है, घर में रखा है, नहीं, समय पर उसका प्रयोग चाहिए, उपयोग चाहिए, समय पर दवाई लगानी पड़ेगी और वो भी विधि पूर्वक लगानी पड़ेगी, तब जाके बहुत जन्मों के जो संस्कार आदत बनी है वो परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ भावना से आप कहेंगे हमने सुन लिया, योग में आके बैठ गए, हाँ थोड़ा कुछ मिलता है, इस वातावरण का भी प्रभाव है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उस वातावरण में रह करके अगर आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो पदम गुना मदद मिलती है, एक नहीं पदम गुना मदद मिलती है। तब बाबा कहता है हिम्मत एक रखो तो पदम गुना मदद मिलती है, तो ऐसे वातावरण मिलता नहीं है। तो ऐसे शांत स्वच्छ वातावरण में बैठकर अगर विधि पूर्वक थोड़ा भी आप अभ्यास करते हो तो बहुत कुछ प्राप्ति देख सकते हैं। अपने मन को हम अपने इच्छा के अनुसार, जैसे बाबा चाहता है मन व्यर्थ से मुक्त हो। अगर मन में चलता है तो मुख से भी आता है बाहर, नहीं तो मुख अपने आप नहीं बोलता है। पहले मन में है, फिर मुख में है, मुख से निकलता है। अगर किसी से मिलो तो बोलना नहीं, ऐसे नहीं, बोलना जरूर चाहिए, बोलो, लेकिन मुख से क्या निकल रहा है, मन में क्या है, स्मृति में क्या है। अगर ज्ञान विधि पूर्वक सवेरे भरा है तो किसी से भी आप मिलो, बात करो, तो मुख से क्या निकलेगा, ज्ञान की पॉइंट्स निकलेंगे ना। अगर वो सवेरे मुरली सुनी, अगर विधि पूर्वक अंदर भरी नहीं है, जो किसी से मिलेंगे बात करेंगे तो क्या करेंगे, संसार समाचार चाहो या नहीं चाहो अपने आप निकल जाएगा। किसी को देखते ही, मिलते ही पुरानी बातें अपने आप जागृत हो जाती है। क्यों? देह की दृष्टि है, देह की स्मृति है, देह के संस्कार अभी भी है, वो जागृत हो जाएंगे, नेचुरल है। अगर किसी को देखते ही देह की स्मृति जागृत नहीं हो तो उसके लिए और एक बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि चलते फिरते भी अगर किसी को देखो तो आंखें बंद तो नहीं कर सकते, देखना भी पड़ता है। किसी को देखने के बाद हमारे मन में देह की स्मृति जागृत नहीं होना चाहिए, संभव है? अब सहज अभ्यास है। बाबा ने कहा कि चलते फिरते अगर एक अभ्यास करके देख लो आप, कल सारे एक ही दिन अभ्यास करके देख लो, इसका प्रभाव देख सकते हैं, तब आपको विश्वास होगा। हां, इस प्रकार सहज चलते फिरते करने से क्या फायदा है, तो वो अनुभव आपको आगे बढ़ाएगा। तो एक अभ्यास बहुत सुंदर है, कल सवेरे उठते ही अपने आप से बात करो, अपने आप को पढ़ाओ कि मुझे सारे दिन में कल एक काम करना चाहिए, मेरे आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति आता है उसको खाली हाथ भेजना नहीं है, उसको कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। तो क्या देंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। तो किसी को पर नजर पड़ते ही मन के अंदर, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, और किसी पर नजर गई, बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, सुखदाता है। आज बाबा ने कहा बाप कौन है, ये दुख हरता सुखदाता है ना, बाप का प्रोफेशन है। तो हम भी कौन, हम भी बाप के बच्चे हैं, तो अपने आप तो ना बाबा भी देता है, बच्चों को भी यही सिखाता है, किसी पर नजर पड़ी हमारे मन में श्रेष्ठ विचार आना चाहिए, उसको दुआ कहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। किसी को भी खुले आके देख लो आप, आंखें झुकाने की जरूरत नहीं, कोई कैसा भी हो, और देख लो किसी पर नजर पड़ने के बाद मेरे मन में क्या विचार आता है। फिर भी कुछ अभी पुराने आदत के अनुसार अगर गलत विचार भी आया, तुरंत समझाओ, नहीं ये नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। अगर दो तीन दफा अगर अपने आप को आप पढ़ाएंगे तो हमारी जो बहुत जन्मों से आदत पड़ी है देह की दृष्टि, पता है देह की दृष्टि ठीक नहीं है, लेकिन वो कैसे मिटेंगे, अपने आप तो नहीं मिटेंगे ना, कुछ उसके ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा, उसको मिटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, दूसरी आदत को अपनानी पड़ेगी। तो वो ये आदत बाबा ने बताया कि रास्ते पर चलते किसी पर नजर पड़ी, कोई कैसा भी हो, एक काम अभ्यास एक दिन करके देख लो आप, यहां नजर पड़ते ही मन में संकल्प, बाबा नहीं हम भी नहीं दे सकते, हमारे पास भी नहीं है, बाबा से ले लो, बाबा इस आत्मा को आप शांति की शक्ति दे दो। देखना आप कल एक दिन करके देख लो, देखना कल शाम को आप रात को सोएंगे, देखना कैसी नींद आती है, एकदम गहरी, कोई भी इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। क्यों? सारे दिन में आपने श्रेष्ठ स्मृति को जागृत रखा, उसी स्मृति में जाके सोते हो, नहीं तो क्या सवेरे पांच मिनट किया, सारे दिन में इधर उधर का चिंतन करते हैं, नेगेटिव का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है, सारा दिन में देहधारी दिखाई देते हैं तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो उस प्रभाव से मुक्त होने के लिए, देखते हुए भी उसका प्रभाव हमारे पर न पड़े, तो उसके लिए यह अभ्यास हमें कुछ देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो जरूर दूसरों के संकल्प आपके ऊपर प्रभावित प्रभाव डालेंगे। दूसरों कोई भी अपने 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 हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ छोड़ता है, हर एक के मन से निकलता है, तो हमारे ऊपर दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो हमें अपने को संभालना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर तरीका है तीसरा, चलते फिरते रास्ते पर चलो, कर्म करते रहो, सामने कोई दिखाई दिया, नजर पड़ते ही ये आदत अमृत वेले उठते सवेरे अपने आप को पढ़ाओ, क्योंकि बुद्धि के अंदर यह धारणा चाहिए, समझ चाहिए कि सारा दिन में मुझे क्या करना चाहिए, और सवेरे ही अपने आप को प्रोग्राम दे दो, मुझे क्या करना चाहिए सारे दिन में आज। किसी पर नजर गई, ये तीन अभ्यास अगर आप करते हो, जो बाबा का लक्ष्य है, चाहता है, बाबा ने कहा बाप पसंद, बाप को कौन पसंद है, बाप को क्या पसंद है, क्या पसंद है, बाबा कैसा है, बाप पसंद, बाप जैसी स्थिति चाहिए, बाबा की स्थिति क्या है, वैसे बच्चों की स्थिति बाबा चाहता है। तो इसलिए जो हमारे पर बहुत व्यर्थ व्यर्थ बातें, बिना मतलब कुछ कार्य नहीं है, मन चलता है खाली मन, उससे मुक्त करने के लिए इन तीन अभ्यास का थोड़ा भी करेंगे आप, 100% नहीं 5% भी करेंगे, तो पता चलेगा इससे फायदा क्या है, और वो फायदा देखेंगे, अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए और सहज भी, कोई मेहनत भी नहीं है, बहुत कुछ पढ़ते रहो, 2-3 घंटा बैठे रहो, पाव दर्द करेगा नहीं, 15 चलते फिरते 15 मिनट ही योग में बैठो, क्योंकि आज हमारी ताकत इतनी नहीं, 1-1 घंटा एक ही जगह पर बैठे रहो, शरीर बहुत पुराना होता गया है, उस अनुसार थोड़ा सा भी बैठो, लेकिन विधि पूर्वक बैठो, जो हम लक्ष्य लेके आए उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन तीन विधियों को अपनाओ तो मन को व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं और अपने आप को समर्थ बना सकते हैं। ऐसे हमने अपने अनुभव से देखा, तो आप अभ्यास करके देख लो, क्योंकि हरेक का अपना अनुभव ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। सुनने से आगे नहीं बढ़ेंगे, श्रवण से नहीं, श्रवण के बाद एप्लीकेशन चाहिए, तो वो अगर अभ्यास करेंगे आप तो अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।
Thank you.